ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பிரம்ம விஜயான கேந்திர ஸ்ரீ கைலாசாசமிக்கு பஞ்சம பீட்டாதீஸ்வரர் பிரம்மலீன சுவாமி பிரேம்புரி மகாராஜ் கே சம்ஸ்மரண் சே संस्थापित है अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में नित्य प्रति स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम है। अभी विशेष कार्यक्रम है उपनिषद ज्ञान यज्ञ अथर्ववेदीय प्रश्न उपनिषद चल रही थी। छह प्रश्न में से पांच प्रश्नों का विचार हो गया, षष्ठ प्रश्न है जिसमें ब्रह्म विद्या का ही उपदेश है। अथ हैनम सुकेशा भारद्वाज पप्रछ भगवन हिरण्यनाभ कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्तीतं प्रश्नमपृच्छत षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारं अब्रुवं नाहमिमं वेद यद्यहमिमं अवेदिशं कथं तेनावक्षमिति समुलोवा एष परिशुष्यति युवनृतमभिवदति तस्मा नाराम्यनृतम वक्तुम शत्रुस्मि रथमारुह्य पब्रव्राज तं त्वा पृच्छामि क्वासु पुरुषैति। अथ पंचम प्रश्न उत्तर समाप्त होने के बाद एनम पिपलाद महर्षि से पूछा, सुकेशा नामे भरद्वाज का गोत्रापत्य भारद्वाज ने पूछा, हे भगवान संबोधन करके, हिरण्यनाभ कौशल्य राजपुत्र, हिरण्यनाभ नाम है कुशल देश के राजा के पुत्र राजपुत्र, माम उपेत्य मेरे पास विधिवत नम्रता के साथ आकर के एतम प्रश्नम अपृच्छत, इस प्रश्न को मुझे पूछा था उन्होंने। प्रश्न क्या है, षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत्थ, वो भी पिपलाद महर्षि भी भरद्वाज गोत्रा भरद्वाज के वंश में, तो उनको भारद्वाज कह करके, हे भारद्वाज षोडश कलम पुरुषम वेत्थ, षोडश कला वाले पुरुष उसका आप जानते हैं, तो जानते मतलब मुझे उपदेश कीजिए। षोडश कल पुरुष कलाकार था, अवयव सोलह अवयव वाले पुरुष इसको जानते हैं तो उपदेश कीजिए। तम अहम कुमारम अब्रुवम मह, ये सुकेशा भारद्वाज कहते हैं, नहीं ये तो भारद्वाज ने पूछा था, वही भारद्वाज महर्षि पिपलाद भारद्वाज ने, गोत्रापत्य नहीं है। सुकेशा भारद्वाज से आकर के राजपुत्र ने पूछा, हे भारद्वाज, सुकेशा भारद्वाज षष्ठ प्रश्न कर रहे हैं, उनसे आकर के पूछा था कौशल्य राजपुत्र, हे भारद्वाज जो सुकेशा है वो भारद्वाज है, आप षोडश कल पुरुष को जानते हैं, तो जानते तो बताइए। तम अहम कुमारम अब्रुवम, ये सुकेशा भारद्वाज कहते हैं महर्षि पिपलाद से, तम कुमारम अहम अब्रुवम, वो कुमार राजपुत्र कौशल्य को मैंने कहा, नाहम इमम वेद इमम अहम न वेद, ये जो तुम पूछते हो षोडश कल पुरुष ये मैं नहीं जानता हूं, ये नहीं जानता हूं कहने पर राजकुमार को थोड़ा संदेह हुआ, इतने बड़े हैं ये नहीं जानते कैसे, ये उनको ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा संदेह हुआ। तो उसके मुखा आकृति आदि को देख करके उनको लगा कि विश्वास नहीं करता है, तो विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं सुकेशा भारद्वाज, यदि अहम एवं अवेदिशम कथम ते नावक्षमिति, यदि ये षोडश कल पुस्तक में जानता तो तुमको क्यों नहीं कहता, तुम इतने विधिवत नम्रता के साथ आकर के मुझे पूछते हो, तुम्हारे जैसे अधिकारी को मैं कैसे नहीं कहता, यदि नहीं जानता क्यों नहीं कहता। समूलो वा ऐसा परिशुष्यति यो अनुतम अभिवदती, फिर भी उसको संदेह लगा, देखा कि संदेह करता है, तो फिर कहते हैं ये मूल के साथ सुख जाएगा, समूल व्यवस्था परिशुष्यति पूरा सुख जाएगा, समूल मूल के साथ पूरा पूरा ही मिथ्या भाषण करेगा, उसके तो सब नष्ट हो जाएगा, अर्थात यह लोक परलोक दोनों से नष्ट हो जाएगा। मूल के साथ इस लोक में भी कुछ सुख प्राप्त नहीं करेगा, परलोक में प्राप्त नहीं करेगा। जो परिशिष्ट यो अनुतम अभिवतति, जो मिथ्या भाषण करता है, तस्मा नारहामि अनृतम वक्तुम, इसे मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं बोलता हूँ वास्तव नहीं जानता हूँ। तो इसे जो विश्वास दिलाया राजपुत्र को समझ में आ गया ये नहीं जानते हैं, तो नम्रता के साथ उनसे सुनने के लिए जिज्ञासा लेकर आए था, फिर देखा इनको नहीं आते। सत्तू स्नेम रथम आरूह पर्वराज, चुपचाप जैसे आया था ऐसे रथ में चढ़कर वापस चला गया लज्जित होकर के। तौं त्वा पुच्छामि क्वासु पुरुषेति, वो प्रश्न जो मुझे पूछा मैं नहीं बता पाया, तब से मेरे मन में ये जैसे कोई कील घुस गया अंदर, ऐसे अंदर हमेशा रहता है मैं वो क्या है वो जानना चाहता हूँ, क्या षोडश कल पुरुष है उसको मैं पूछता हूँ, क्वासु पुरुष वो कहाँ है ऐसा सोलह कला वाला पुरुष। यहाँ जो कहते नारहामि अनृतम वक्तुम ऐसा कहने पर वो चला गया, श्रुति इसके द्वारा बताती है। तो मिथ्या भाषण किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और योग्य है यदि कोई जानता है, योग्य शिष्य को उपदेश करना चाहिए, विद्या प्रदान करनी चाहिए, न्याय से जो आता है योग्य है तो जानने वाले को अवश्य ही विद्या प्रदान करनी चाहिए, और मिथ्या भाषण कभी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे किसी स्थिति हो जाए मिथ्या भाषण नहीं करनी चाहिए, श्रुति यहां उपदेश शिक्षा करती आख्या के माध्यम से। तो यही प्रश्न मैं पूछता हूँ, वो षोडश कल पुरुष कहाँ है, आगे महर्षि पिपरा दो उसका उत्तर देते हैं। तस्मे सहोवाच इहे वांत शरीर सम्य स पुरुषो यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति इति, तस्मै भारद्वाज सुकेश को स महर्षि पिपलाद ने उवाच कहा। यह एव अंत शरीर समय है समय, यही शरीर के अंदर वह पुरुष है, षोडश कला पुरुष ये बाहर नहीं, यही शरीर के अंदर है, बाहर भी है किंतु यही शरीर के अंदर है, उसको जानने के लिए इधर उधर जानना जरूरत नहीं, शरीर के अंदर है। ये षोडश कला कैसे हुआ, यस्मिन एता षोडश कला प्रभवंती, जिसमें सोलह कला उत्पन्न होती है। सोलह कला क्या आगे बताएंगे किस प्रकार उत्पन्न होती है, जिसमें ये सोलह कला सोलह अवयव उत्पन्न होते हैं, ये कला सोलह से की उत्पत्ति होने से उसको षोडश कला कहते हैं। वह पुरुष ये अंदर शरीर के अंदर हृदय में है, कला है अवयव, यानी कि उत्पत्ति वास्तव आरोपित है, अज्ञान के कारण उत्पत्ति कहते हैं। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप और अपवाद कला अवयव जैसे अवयव नहीं है, पुरुष निरवयव है उससे उत्पन्न होती ऐसे लगता है, तो जो कल्पित पदार्थ है उसको देखा करके उसके अधिष्ठान को बताना है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म अवाच्य है, अभांग मनुष्य गुजर है, उसको उपदेश करने के लिए कुछ शब्द नहीं है। जिस प्रकार सर्प दिखता है रज्जु होने पर भी उसको सर्प सर्प कहते हैं, जो रज्जु का उपदेश करेंगे कहते हैं सर्प ही रज्जु है, सर्प को देखा करके कहते जो सर्प हुई रज्जु है, कल्पित सर्प को उद्देश्य करके वास्तव रज्जु का उपदेश किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ ये कला भी कहेंगे, कला की उत्पत्ति उसमें देखा करके नाम रूप के द्वारा, नाम रूप मिथ्या नेह नानाति किंचन नेत नेति करके निषेध करके अधिष्ठान का उपदेश करना है, इसलिए अधिष्ठान तत्व है सत्य, उसको उपदेश करने के लिए इसमें उत्पत्ति बताते हैं, षोडश कला की उत्पत्ति। जितने पदार्थ है व्यभिचारी एकत्र है एकत्र नहीं है, कभी है कभी नहीं है, वो सब मिथ्या है। यथ्यात सर्वत्र सर्वदा विष्णु भगवान ने भागवत में ब्रह्मा जी को उपदेश किया, सर्वत्र हो सर्वदा हो तो सत्य है, कहीं है कहीं नहीं है, कभी है कभी नहीं है तो सत्य नहीं है। उसको कहते व्यभिचारी, रहता है कभी नहीं रहता है, जिसका व्यभिचार होता है व्यभिचारी वास्तव नहीं है। गीता में भगवान ने कहा नाभाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता है, ना सत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, सत वस्तु का अभाव नहीं होता है, जिसका अभाव होता है वो सत नहीं है, जिसका अभाव कभी भी हो जाए कहीं भी हो जाए वो सत नहीं है। घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान सब ज्ञान होता है, रूप ज्ञान हो रस ज्ञान हो घट ज्ञान हो पट ज्ञान हो, ज्ञान का व्यभिचार नहीं हुआ, विषय का व्यभिचार हुआ, रूप रस नहीं रस रूप नहीं घट पट नहीं पट घट नहीं, किंतु ज्ञान वस्तु है, जो वस्तु दिखती है तो वो ज्ञान अवश्य है, घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान, ज्ञान के बिना वस्तु है ऐसा निश्चय नहीं होगा। यदि वस्तु है आपको लगता है तो ज्ञान अवश्य है, ज्ञान हो गया अव्यभिचारी, वस्तु व्यभिचारी है। कोई शंका करते कहीं किसी पर्वत गुफा के अंदर कोई वस्तु है, उसका तो ज्ञान किसको नहीं है, तो ज्ञान तो नहीं रहा वस्तु होने पर भी, हमको नहीं हम नहीं जानते तो वस्तु तो रह सकती है, तो फिर वस्तु होने पर ज्ञान नहीं रहा तो ज्ञान का भी व्यभिचार, तो कहते ऐसा नहीं हो सकता है, वस्तु है यदि आप कहते हो तो ज्ञान के बिना नहीं कह सकते हो, अनुमान से कहो शब्द से सुनकर कहो, अनुमान करते हैं स्थान है पर्वत है तो कोई स्थान हो सकता है वहां कोई वस्तु हो सकती है, तो ये तो अनुमान से वस्तु का निश्चय हो गया। एक अनुमान प्रमाण से वस्तु जैसे पर्वत में धूम को देख करके वन्नी का निश्चय होता है, वन्नी कितने बड़ी है कितने आकार है ये नहीं दिखता है प्रत्यक्ष नहीं होने से, किंतु सामान्य निश्चय हुआ अवश्य वन्नी है जिसके कारण नीचे से ऊपर धूम निकल रहा है। इसी प्रकार पर्वत इतने बड़े पर्वत है, कोई छोटा गुहा जैसे स्थान कहीं हो सकता है, उसमें कोई पदार्थ रह सकता है, कोई पत्थर हो सकता है, कोई मेढक हो सकता है, कोई जंतु जानवर हो सकता है, कोई रह सकता है, यह अनुमान से सिद्ध हो गया ज्ञान है। ज्ञान यदि नहीं तो वस्तु है करके आप नहीं कह सकते, वस्तु है और ज्ञान नहीं, तो यदि वस्तु है कहते तो ज्ञान हो गया। बुद्ध्वा शब्दान प्रयुक्ते, जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसका कारणीभूत तो ज्ञान मानना पड़ेगा, तो ज्ञान के बिना वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, वस्तु है ऐसा नहीं कह सकते, अर्थात ज्ञान है अव्यभिचारी और विषय व्यभिचारी, विषय कई भी कोई विषय यहां है तो वहां नहीं, अन्यत्र है तो यहां नहीं, किंतु ज्ञान सर्वदा सर्वत्र रहता है। सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान नहीं रहता है कोई, कि सुषुप्ति अवस्था में सो गए तो कोई ज्ञान नहीं रहा, यद्यपि विशेष ज्ञान नहीं है किंतु सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान सुषुप्ति का प्रकाशक है, तभी उठने के बाद कहते हैं मैं गाढ़ निद्रा में सो गया तो कुछ पता नहीं चला, तो सुषुप्ति का साक्षी है, सुषुप्ति को जानने वाला है सामान्य चिद रूप ज्ञान। यदि ज्ञान रूप साक्षी नहीं रहे, सुषुप्ति का प्रकाश नहीं करे, तो सुश्रुति है करके क्या प्रमाण, खाली पुस्तक पढ़कर सुश्रुति कहेंगे ऐसा नहीं, गाढ़ निद्रा सुश्रुति शब्द भी नहीं कहे, किंतु गाढ़ निद्रा में सो गया था, उस समय स्वप्न नहीं देख रहा था किंतु सो गया था, स्वप्न नहीं देखते किंतु सो गए निद्रा है उसका नाम सुश्रुति है। जितने समय सोते हमेशा ही स्वप्न देखते, पूरा ऐसा नहीं है, कुछ गाढ़ निद्रा हो जाती है कभी स्वप्न देखते हैं, तो सुश्रुति का भी अनुभव होता है, अनुभव करने वाले ज्ञान है जिसको कहते स्वरूप ज्ञान। तो ज्ञान का व्यभिचार कभी नहीं होता है, नित्य है, और विषय का व्यभिचार होता है, जिस ज्ञान को सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म का अनंत अपरिच्छिन्न ज्ञान, ज्ञान ही अव्यभिचारी ज्ञेय पदार्थ मिथ्या है, तो यही सत्य ब्रह्म ही सत्य है, यह अंत पुरुष में है, इसको षोडश कला पुरुष रूप से कहा गया, सोलह कला आरोपित है जिसमें उत्पन्न होती कला की उत्पत्ति उससे होती है, उत्पन्न करके उसमें पुरुष का विशेषण कह करके आगे उसका निषेध कर देंगे तो उसका अधिष्ठान ब्रह्म ज्ञान होगा। अभी किस प्रकार सोलह कला की उत्पत्ति इसको पहले बताते हैं।
स इच्छा चक्रे कस्मिन्नहम् उत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। स षोडश कल पुरुष प्रधान आत्मा इच्छा चक्रे इच्छण किया, विचार किया, सृष्टि इच्छण है दर्शन ज्ञान, सृष्टि किस प्रकार सृष्टि करनी है, पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि हुई थी इसी प्रकार सृष्टि इसी कल्प में भी है। सदा चंद्रा सूर्यमसो यथा पूर्वम अकल्पयत, सूर्य चंद्र आदि जिस प्रकार पूर्व कल्प में ऐसे ही दाता बनाते हैं, तो सृष्टि के क्रम विषय का ज्ञान को कहते ये ईक्षण, जिस क्रम से सृष्टि हुई थी उसी क्रम का ज्ञान होता है। यस्य ज्ञानमय तप, ज्ञान ही है ईक्षण ज्ञान, तो सृष्टि क्रम, सृष्टि का फल, प्राणियों का कर्म, तद विषय का ज्ञान हुआ ईक्षण। ईक्षण करके विचार किया कस्मिन नु अहम उत्क्रांते, कस्मिन उत्क्रांते अहम उत्क्रांत भविष्यामि, किसके उत्क्रमण होने पर मैं निकल जाऊं, और कस्मिन प्रतिष्ठिते वा अहम प्रतिष्ठास्यामि, किसके रहने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं, किसके निकल जाने पर मैं निकल जाऊं, ये विचार किया। विचार करके आगे प्राण की स्तुति करेगा। स इच्छाम चक्रे, इच्छण करने से, विचार करने वाला इच्छण ज्ञान चेतन से सृष्टि है। सांख्य सिद्धांत में एक त्रिगुणात्मक प्रधान मानते हैं जड़, वेदांत में भी त्रिगुणात्मक माया मानते हैं, किंतु माया पुरुष अधिष्ठान ब्रह्म से भिन्न नहीं है, अनिर्वचनीय और स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं होती है, चेतन से विशिष्ट होकर के। किंतु सांख्य सिद्धांत में त्रिगुणात्मक प्रकृति पुरुष चेतन से अत्यंत भिन्न ही सत्य मानते हैं, और चेतन के बिना केवल जड़ प्रधान सृष्टि करता है ऐसा कहते हैं। उसका निराकरण श्रुति में हो जाती है, इच्छण पूर्वक सृष्टि करने से, इच्छण करने वाला चेतन ही है, जड़ नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्मसूत्र में आया इच्छतेर ना शब्दम, शब्द अप्रतिपाद्य प्रधान, सांख्य सिद्धांत से कल्पना तो करते हैं, श्रुति सिद्ध नहीं प्रधान जैसे उनकी कल्पना है। माया श्रुति में है, मायांतु प्रकृति में विद्यात, किंतु जैसे सांख्य लोग कल्पना करते हैं चेतन से अत्यंत भिन्न प्रधान, ऐसे श्रुति में नहीं, अशब्दम प्रधानम न इच्छते, इच्छण पूर्वक सृष्टि कहने से प्रधान सृष्टिकर्ता नहीं है। ये स इच्छा चक्रे तद इच्छत बहु श्याम प्रजाय, बहुत ताने में पहले इच्छण आगे सृष्टि, इसलिए इच्छण करने वाला चेतन ही होगा, चेतन से सृष्टि, न कि जड़ प्रधान से, न कि परमाणु से। तार्किक मत के अनुसार परमाणु से द्वियणु के त्रियणु को कर सृष्टि कहते हैं, वो नहीं, ईश्वर ही सृष्टि करता है। तो सृष्टि करने वाला विचार किया, ये शरीर बनाएंगे किसके उत्क्रमण देह से निकल जाए तो मैं निकल जाऊंगा, किसके रहन पे मैं रह जाऊंगा, ये विचार किया। विचार करके आगे सृष्टि करने के लिए प्रारंभ, स्वयं परमात्मा सृष्टि करके वह तत्सृष्टा तदेव अनुप्रविशत, उसे प्रविष्ट होता है और जीव रूप हो जाता है, उपाधि के कारण जीव का उत्क्रमण होता है, गमनागमन होता है, जीव निकल जाता है तो किसके निकल जाने पर जीव निकल जाएगा, किसके रहने पर जीव रहता है, ये विचार करके उपाधि का, किस उपाधि के निर्गमन से जिस प्रकार घट रूप उपाधि को लेकर के घटाकाश कहते हैं, घट नष्ट हो गया तो आकाश तो रहेगा किंतु उसको घटाकाश नहीं कहते हैं, तो कहते घटाकाश नष्ट हो गया, घट की उत्पत्ति होने से घटाकाश की उत्पत्ति से उपाधि को लेकर के आकाश में उत्पत्ति नाश प्रयोग किया जाता है। घट को लेने पर आकाश उसके साथ नहीं जाता है, तो भी नहीं समझ करके घटाकाश का गमन आगमन इसे प्रयोग कर देते हैं, वास्तव नहीं होने पर भी। ठीक इसी प्रकार जीव के लिए उपाधि अंतकरण प्राण आदि है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर चल जाने पर जीव चल जाता है, जीव का जो वास्तव लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य वह निर्विशेष है, व्यापक है, निष्क्रिय है आकाश के समान, उसमें कोई क्रिया कुछ नहीं है, किंतु अंतकरण चले जाने से अंतकरण में जीव चेतन का प्रतिबिंब जिसको कहते चिदाभास वो चल जाता है। अब यही विचार है, किस उपाधि के निकल जाने पर जीव चल जाएगा, किस उपाधि के प्रवेश होने पर जीव का प्रवेश होगा, ऐसे विचार करके आगे सृष्टि प्रारंभ हुआ। सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सब प्राणम असृजत प्राणा छद्दाम खौं वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी इंद्रिय मन अन्न मन्नाद वीर्यम तपो मंत्रा कर्म लोका लोके सुच नाम च। इसमें सोलह कला का नाम है, एक एक कर गिनती करो, प्राण श्रद्धा खम आकाशे वायु ज्योति आप जल पृथ्वी इंद्रिय मन अन्नम वीर्यम तप मंत्र कर्म लोक नाम, ये सोलह हो गया। प्राण पहले अंत में नाम, सब प्राणम असृजत सब के सर्वाधिक प्राण की सृष्टि की। यहां प्राण हिरण्य गर्भ समष्टि प्राण, व्यष्टि नहीं, समष्टि प्राण की सृष्टि हुई, सब प्राणियों का आधार है, वही समष्टि प्राण अभिमानी हिरण्य गर्भ की सृष्टि हुई। उसके बाद प्राणा श्रद्धा, प्राण के बाद श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। श्रद्धा है शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्ति का हेतु है, शुभ कर्म करने के लिए प्रवृत्ति का हेतु है श्रद्धा। श्रद्धा के बड़े दैवी संपत्ति है, शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धियावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्र के वाक्य को गुरुवाक्य को सत्य बुद्धि करके दृढ़ निश्चय करना, इसका नाम है श्रद्धा। भगवान आचार्य जगतगुरु आचार्य भगतपाद कहते हैं, सा श्रद्धा कथिता सत्पुरुषों के द्वारा सुश्रद्धा कही गई यया वस्तु उपलभ्यते, जिससे वस्तु साक्षात्कार हो जाता है, वस्तु आत्म वस्तु तात्विक पारमार्थिक वस्तु का साक्षात्कार हो जाता है श्रद्धा, उसके लिए बड़ा सबसे बड़ा कारण। श्रद्धा होने पर ही श्रवण करेगा, सत्य बुद्धिया ग्रहण करेगा, और श्रवण करने पर आगे मनन भी करेगा। श्रद्धा होने पर, श्रद्धा नहीं कोई कुछ कहता सुनते हैं, श्रद्धा नहीं तो उसकी उपेक्षा कर देते हैं। श्रद्धा जितने अधिक है शास्त्र सुनते ही दृढ़ निश्चय हो जाएगा, दृढ़ निश्चय हो गया, श्रुति कहते नेह नानाति किंचन कुछ है ही नहीं, जगत मिथ्या है, श्रुति कहती तो प्रमाण निश्चय हो गया, श्रुति कहती जरूर प्रमाण है, किंतु आगे विचार करेगा कैसे प्रमाण है, इतने प्रपंच दिखता है नहीं कैसे, किंतु श्रुति कहती तो जरूर सत्य है, जगत मिथ्या है, तो हमको तो सत्य लगता है, तो ये विचार शुरू होता है, इसका नाम मनन। फिर उसको संशय निवृत्ति के लिए अपने आप विचार करेगा, शास्त्रीय युक्ति के द्वारा आचार्य गुरु के पास जाएगा, प्रश्न करेगा, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया,